दिन भर तारीख 31 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा, कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं।
डर हो गया था कि कहीं जेडी और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे
मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं।
करेंगे विश्लेषण कि क्या इसे नीतीश का आत्मसमर्पण कहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के एक और समाजवादी पार्टी के दो विधायक बीजेपी में शामिल हुए।
इस दिन सदन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चीन की वकालत किया और हिंदुस्तान को कमजोर बताया। उस दिन से ही मेरे मन में ये भाव।
कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की फंडिंग का मामला गरमाया। कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पटना में एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सभी आरोपों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। पटना हाईकोर्ट ने इस दौरान बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है, इसलिए इस मामले में अदालत की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। इस सुनवाई के बाद एक सरकारी वकील ने बताया,
अंतिम रूप से जब कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया कि ये अब फ्लोर पर टेस्ट हो चुका है और सरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, जीत गई है फ्लोर में, तो एसआर बम्बई केस का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस केस के हवाले से इसको डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि अब ये इनफ्रक्चुअस हो गया है, अब इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं।
ये थे पटना में सरकारी वकील। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इराकी दूतावास पर आत्मघाती हमला हुआ है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री के बयान के मुताबिक इस दौरान गोलीबारी भी हुई और 4 घंटे के संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने 4 हमलावरों को मार गिराया है। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक हमलावर ने खुद को दूतावास के गेट पर उड़ा लिया और बाकी 3 हमलावर दूतावास के परिसर में घुस आए थे। इराकी आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि 2 अफगान सुरक्षा कर्मियों के इस हमले में मौत हो गई है। ये पहली बार है कि काबुल में इराकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। हाल ही में यहां पर इराक के मोसूल में आईएस पर इराकी सेना की जीत का जश्न मनाया गया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में नई असेंबली के लिए मतदान की व्यापक तौर पर आलोचना हो रही है। इस नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन से विपक्ष के बहुमत वाली कांग्रेस की शक्तियां दरकिनार हो जाएंगी और नया संविधान की रचना का काम शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार के इस फैसले को तानाशाही करार दिया है और यूरोपीय संघ ने कहा है कि नई असेंबली वेनेजुएला के संकट के समाधान का हिस्सा नहीं हो सकती है। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता मीना एंड्रीवा ने कहा,
The Commission has indeed grave doubts as to whether the election result can be recognized. Having said that,
यूरोपीय आयोग को संदेह है कि इस तरह के मतदान के नतीजे को मान्यता दी भी जाए या नहीं। यूरोपीय आयोग की उप प्रमुख फ्रेडरिका मोगरिनी अभी इस पर विचार कर रही हैं। ये थे मीना एंड्रीवा के शब्द। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मतदान के नतीजे का स्वागत किया है और कहा है कि असेंबली को देश में इमरजेंसी लगाकर न्यायिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कल हुए मतदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाले सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीरों का अध्ययन करने वाले दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले एक दशक में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बिजली की सुविधा बेहतर हुई है। दक्षिण कोरियाई सरकार के समर्थन वाले कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक प्योंगयांग की रात के समय में ली गई तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था ने करीब 10 साल पहले नया मोड़ लिया और 1990 के दशक की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति संभल गई है। म्यांमार से विदेश जाने की कोशिश कर रहे एक जाने माने पत्रकार स्वे विन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक स्वे विन को यंगोन हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया है। उनके ऊपर मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार संवाददाताओं के सामने आए। उन्होंने कहा कि मोदी का मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है, 2019 में मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश कुमार अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल पर काफी हमलावर नजर आए और कहा कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। इससे पहले RJD ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उन पर दर्ज हत्या के कथित मामले को फिर से उठाया। पटना में हमारे सहयोगी नीरज सहाय आज इन दोनों दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
महागठबंधन की सरकार टूटने और NDA के सहयोग से नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई और कहा कि जिस व्यक्ति पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा था, वे उन आरोपों के विरुद्ध जनता के समक्ष बिंदुवार जवाब नहीं दे पाए।
डर हो गया था कि कहीं JD और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार हैं, यानी हम जहर हैं। और बल बूते की बात लोग करते हैं और बिहार के और बहुत लोगों को भ्रम रहता बेस को लेकर के, मास बेस कास्ट बेस नहीं होता।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है।
मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं।
दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगतानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने विरुद्ध लगे आरोपों पर भी जनता के समक्ष अपनी बातें रखनी चाहिए। उनके अनुसार,
वो जहां स्कूल जहां गोली चली, वो बूथ जहां पर तन बनाया गया था, जहां की एक घटना हुई और चार भाइयों में एक भाई मरा, तीन भाई जिंदा हैं, कि श्री नीतीश कुमार जी अपने प्रथम दिन से लेके आज तक इस बिहार के अपराध के सबसे बड़े पोषक हैं। वह व्यक्ति जिस पर 302 में कॉग्निजेंस लिया जा चुका हो, जो 2009 से लेके आज तक कॉग्निजेंस के बाद बिहार के प्रधान की कुर्सी पर बैठा हो, मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं।
आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ चंपारण यात्रा की घोषणा कर दी है, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ने के आसार बने हुए हैं। नीरज सहाय, BBC, पटना।
राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई। एक वक्त था जब मोदी के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार ने NDA का दामन छोड़ा था। उस दौरान नीतीश मोदी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो बार बार धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते थे, यहां तक कि मोदी को चुनौती देने के चलते उनका नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल संभावित दावेदार के रूप में होने लगा था। तो क्या मोदी के सामने ये नीतीश कुमार का आत्मसमर्पण है? यही सवाल मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
यह तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, क्योंकि एक जमाने में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से इस कदर चिढ़ते थे कि उस तरह से चिढ़ने वाले तो लोग कांग्रेस में भी नहीं थे। कांग्रेस में लोग मोदी जी के अपोनेंट थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुदलीय मीटिंग हो रही है या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग कॉल किया है जहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो वहां लोग कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उनसे हाथ न मिलाए। लेकिन नीतीश कुमार जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो पंजाब की एक रैली में वो इस कदर शर्मा रहे थे उनसे हाथ मिलाना या हाथ उठाना रैली में कि पूछिए मत। दूसरी तरफ पटना में उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के दौरान डिनर रखा था, उसको भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति के कारण उसको रद्द कर दिया था। तीसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात की जब रिलीफ फंड भेजा बिहार के बाढ़ के समय, उन्होंने उसको भी लौटा दिया था। तो मैं ये इसलिए तीनों उदाहरण दिया कि उनकी चिढ़ कुछ ज्यादा थी और इस वक्त जो उनका आत्मसमर्पण है वह भी कुछ ज्यादा है। वो दो एक्सट्रीम पर गए हैं, एक तरफ वो इस कदर विरोधी थे और आज वो इस तरह समर्पित हैं कि उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी अपराजेय हैं,
तो जैसा कि आप खुद कह रहे हैं उर्मिलेश जी कि जिस तरह से चिढ़ते थे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ते थे, हाथ मिलाने की तस्वीर नहीं खिंचाना चाहते थे, ऐसा अचानक क्या हो गया कि मोदी ही अब उनको दिखाई दे रहे हैं?
बड़ा बढ़िया आपने सवाल पूछा है और मैं समझता हूँ कि ये सवाल भारत के मीडिया ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं खोजा है। किसी सियासतदान ने भी इसका जवाब अभी तक ठीक से नहीं दिया है। अनुमान अटकलें ही केवल लगाई जा रही हैं, लेकिन सच पूछिए तो अभी तक कोई ये समझ नहीं पाया ठीक से और इसको विस्तार से साक्ष्यों के साथ नहीं पेश कर सका कि आखिर अचानक पिछले कुछ महीने से श्रीमान नीतीश कुमार जी का हृदयांतरण जो हुआ है उसकी असल वजह क्या है। सिर्फ FIR तो नहीं हो सकती है कि उनके उप मुख्यमंत्री पर एक FIR था या जैसा उनका कहना है कि दखलंदाजी होती थी। पत्रकार के रूप में मेरी जो जानकारी है कि बिहार में लालू प्रसाद की राजनीतिक हैसियत इस कदर नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करें। डिप्टी SP से लेकर DM तक SDM तक भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब नीतीश कुमार जी की मर्जी से होते थे।
अब तक ये माना जाता था कि महागठबंधन की ओर से एक चेहरा नीतीश कुमार का हो सकता था, तो मोदी को चुनौती देने जैसी तो बात अब छोड़ी दीजिए। अब शरद यादव बड़े दुखी और बड़े अप्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या?
नहीं, शरद यादव ने अभी तक जो तेवर दिखाए हैं उसे तो बिल्कुल साफ लगता है कि वो नीतीश कुमार के मौजूदा फैसले से बिल्कुल नाराज हैं और उससे अलग एक वो स्टैंड ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने सुना है कि अली अनवर और MP वीरेंद्र कुमार जो केरल से हैं वो भी इनके विरोध में हैं। तो इस तरह से तीन ये सांसद जो हैं, और शरद यादव का महत्व इसलिए ज्यादा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं और जॉर्ज फर्नांडिस के इनकी पार्टी से बाहर जाने के बाद वो प्रमुख नेताओं में हैं। तो मैं समझता हूँ कि शरद यादव अभी उनका लंबा वक्त है राज्यसभा में, काफी वक्त है, तो वो बने रह सकते हैं लेकिन वो पार्टी के एक रिबल के तौर पे होंगे और जो बहुत सारे विपक्षी खेमा है शायद शरद यादव को एक अपने सहयोगी या एक ऐसे मुखड़े के तौर पे भी इस्तेमाल करेगा जो नीतीश कुमार के लिए समस्या पैदा कर सकता है बिहार में।
नीतीश कुमार की राजनीति का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दो और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तीनों लोगों ने दो दिन पहले ही विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि इन तीनों सीटों पर योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को चुनाव लड़वाया जाएगा ताकि वो सदन के सदस्य बन पाए। हालांकि राजनीतिक हलकों में पार्टी की इस रणनीति की आलोचना भी हो रही है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
दो दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ आने से ठीक पहले इन तीन विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह के तीन दिन के लखनऊ प्रवास के आखिरी दिन इन तीनों को बीजेपी की सदस्यता का पुरस्कार भी मिल गया। सपा नेता यशवंत सिंह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा की थी तो बुक्कल नवाब ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए। इस्तीफा देने के बाद बुक्कल नवाब का कहना था कि उनका अपनी पार्टी में दम घुट रहा था, तो यशवंत सिंह और BSP नेता जयवीर सिंह के भी पार्टी से रूठने की यही वजह थी। हालांकि यशवंत सिंह सपा से मोहभंग होने की कुछ और भी वजह बताते हैं।
जिस दिन सदन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चीन की वकालत किया और हिंदुस्तान को कमजोर बताया, उस दिन से ही मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश से प्रेम नहीं है, चीन से प्रेम दिखाई दे रहा है, उस पार्टी में बने रहना बिल्कुल नैतिकता के आधार पर उचित नहीं है। और मैं समाजवादी पार्टी से ही विधान परिषद का सदस्य था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूं। जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, और जो देश की निंदा करेगा, देश के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेगा, उसके साथ हम नहीं रह पाएंगे।
तीनों नेताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी सोमवार को लखनऊ में थे। दोपहर को उन्होंने पार्टी दफ्तर में ही प्रेस वार्ता की और पार्टी की दूसरी बैठकों में भी वहीं थे, लेकिन इनकी सदस्यता के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला। यही नहीं, प्रेस वार्ता में जब अमित शाह से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अनमने से इस मुद्दे पर जानकारी न होने की बात कही। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि चुनाव से पहले ही दूसरे दलों के तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा चुका है। अब और नेताओं को शामिल करके क्या पार्टी एक मुसीबत मोल नहीं ले रही है? वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि फिलहाल पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड के बाद पार्टी विद डिफरेंस का जो स्लोगन था वो सिर्फ एक स्लोगन बनकर पार्टी में रह गया। दूसरा, पार्टी ने देखा कि सक्सेस जो है ना वो सबसे बड़ी यार्डस्टिक है। लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है, तो इनको लगता है कि जनता इस बात से खुश और नाराज नहीं। सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, आप देखिए इनको कायदे से रखना भारतीय जनता पार्टी को पता है, जो अभी पॉलिटिकल पार्टी में दूसरे से आए हैं भाजपा में उनके मंत्रालय देखिए।
माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्रियों के सदन में पहुंचने के लिए 3 सीटों का इंतजाम हो चुका है। विधानसभा की 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन से खाली हुई है। माना जा रहा था कि मंत्रियों को सदन पहुंचाने के संशय पर अमित शाह के दौरे के बाद पर्दा उठ सकता है। जानकारों का कहना है कि पर्दा उठा जरूर, लेकिन संशय और रोमांच अभी भी कायम है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। फेसबुक पर जो हमारे सहयोगी हमें सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। भारत प्रशासित कश्मीर के 3 परिवार 7 साल से न्याय की आस लगाए बैठे थे, किंतु भारतीय सेना के ट्रिब्यूनल ने घोषणा की और इनकी आशा निराशा में बदल गई। 2010 में नियंत्रण रेखा के पास का इलाका माछिल में 3 नागरिकों को सेना में कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। उन्हें विदेशी चरमपंथी बताया गया था। सरकारी जांच में जब यह पता चला कि मारे गए लोग निर्दोष मजदूर थे, तो सेना ने कर्नल समेत 6 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया, लेकिन सैनिक ट्रिब्यूनल ने यह दंड लंबित कर दिया। इस घोषणा से घाटी में आक्रोश है। श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ट्रिब्यूनल का निर्णय आते ही कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में गुस्से की लहर फैल गई।
फर्जी जड़प के फौजियों को फर्जी जड़प के फौजियों।
नियंत्रण रेखा के निकटतम जिला कुपवाड़ा के मच्छिल इलाके में मई 2010 में 3 नागरिक रियाज, शहजाद और शफी मारे गए थे। सेना ने दावा किया था कि वो विदेशी आतंकी और घुसपैठिए थे, परंतु जब पता चला कि वो आम नागरिक थे, तो सेना ने कर्नल समेत 6 सैनिकों का कोर्ट मार्शल करके इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया। उन्होंने सैन्य ट्रिब्यूनल में अपील की तो ट्रिब्यूनल ने इस दंड को निलंबित कर दिया। इस निर्णय से कुपवाड़ा के 3 परिवार निराश हो गए हैं। शफी की विधवा जबीना कहती हैं कि अगर अफजल गुरु को सबूत न होने के बावजूद फांसी दी जा सकती है, तो दोषी सैनिकों को क्यों नहीं। जबीना कहती हैं दोषी सैनिकों को रिहा करने से 3 परिवारों के लोग सहम गए हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर ट्रिब्यूनल के निर्णय को बदल नहीं सकती, तो हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली जाए। गौरतलब है 2010 की इसी घटना से घाटी में अलगाववादी आंदोलन छिड़ गया था। कई महीनों तक कश्मीर बंद रहा और आंदोलन को दबाने की पुलिस कार्रवाइयों में 100 से अधिक लोग मारे गए। मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि 27 वर्ष में मच्छिल जैसी कई घटनाएं घटी, परंतु एक भी मामले में दोषी सैनिकों या पुलिस कर्मियों को दंड नहीं दिया गया। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और यहां पर आपसे माफी कि सैनिक ट्रिब्यूनल ने दंड को निलंबित किया है, न कि लंबित। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी, उनके 2 बेटों, दामाद पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। गिलानी ने इन आरोपों का खंडन किया है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
बीते 2 महीनों से जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां NIA की तरफ से अलगाववादियों के घरों और दफ्तरों पर छापामारी के बाद अभी तक NIA ने 7 अलगाववादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जो सभी 7 लोग अभी NIA की रिमांड पर है। गिरफ्तार किए गए इन 7 कार्यकर्ताओं में सईद अली शाह गिलानी के दामाद मोहम्मद अल्ताफ शाह भी शामिल हैं, जबकि गिलानी गुट के 3 और कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबकि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक गुट के प्रवक्ता शाहिदुल इस्लाम के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के नेता और चेयरमैन नईम अहमद खान और फारूक अहमद डार और बिट कराटे भी शामिल हैं। NIA ने सईद अली शाह गिलानी और उनके 2 बेटों और उनके दामाद पर संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। गिलानी के दोनों ही बेटों डॉक्टर नईम गिलानी और नसीम गिलानी को NIA ने दिल्ली के NIA हेडक्वार्टर्स पर तलब किया है। गिलानी के बड़े बेटे डॉक्टर नईम गिलानी को कल इतवार को दिल्ली में NIA के दफ्तर पर तलब किया गया था, लेकिन सईद अली शाह गिलानी का कहना था कि उनके बेटे की खराब तबीयत के कारण उन्हें श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। NIA ने नईम गिलानी और नसीम गिलानी दोनों ही पर संपत्ति इकट्ठा करने का इल्ज़ाम लगाया है। ताहम गिलानी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया है कि उनके खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ी साजिश रची है और कश्मीर के अलगाववादियों को आम जनता में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
तो ये जो इल्जामात दिए जा रहे हैं, उनके बारे में हमने जो मटेरियल है वो आपके सामने भेज दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो इल्ज़ाम दिए गए हैं, कहीं कोई मकान के बारे में, कहीं ज़मीन के बारे में, कहीं किसी और चीज़ के बारे में, उसके बारे में हमने वाज़े तौर कह दिया है कि क्या सूरत हाल है और क्या हकीकत है। इस हकीकत को आवाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि ये हकीकत लोगों तक पहुंच जाए।
एनआईए ने गिरफ्तार किए गए उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया है और साथ ही कश्मीर में शांति को बिगाड़ने के लिए हवाला चैनलों के जरिए पैसा वसूल करने के मामले दर्ज किए हैं। खबरों के अनुसार कल इतवार को एनआईए ने जम्मू में सईद अली शाह गिलानी के करीबी माने जाने वाले वकील को कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए हवाला के जरिए पैसा वसूल करने के इल्ज़ाम में पूछताछ के लिए अपने साथ लिया है। बताया जा रहा है कि इस वकील के घर पर भी जम्मू में एनआईए ने आज छापामारी की है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब कार्यक्रम में बारी है आपकी चिट्ठियों की, आपकी राय की।
आपकी राय, आपकी चिट्ठियों और ईमेल के साथ आज स्टूडियो में मैं हूं वंदना और मेरे साथ मौजूद हैं
मुकेश।
मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।
शुक्रिया आपका भी।
मेरे हाथ में है पोस्ट कार्ड, बहुत ही अच्छी लिखावट है ये। इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश टांडा अम्बेडकर नगर से, नाम है राकेश कुमार पांडे। ये कहते हैं कि नियमित श्रोता हूँ और दिन भर का जो कार्यक्रम है वो सुन पाता हूँ, लेकिन हमसे पूछिए, एक तरह से इन्होंने फरमाइश की है जो समय समय पे हमारे पास आती रहती है। ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसे दोबारा शुरू किया जाए। और बिल्कुल ऐसी ही चिट्ठी एक और श्रोता है के शर्मा, इन्होंने जोधपुर से चिट्ठी लिखी है।
तो राजेश जी और के शर्मा जी, आपकी ये जो मांग है ये सही बात है। वंदना ने जैसा कहा कि बहुत लोग करते रहे हैं हमसे पूछिए, एक लोकप्रिय कार्यक्रम था, ममता जी अक्सर लेके आती थी, वो ममता गुप्ता जी। अब ये है कि हम एक कार्यक्रम के तहत नहीं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ और चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए वो अपने कार्यक्रमों या अपनी वेबसाइट पे, जिसे कहते हैं एक्सप्लेनर के रूप में या लोगों को समझाया जा सके उस रूप में, फुटकर रूप में लाते हैं, एक जगह एक कार्यक्रम के रूप में नहीं आ रहा है। और नए फॉर्मेट्स, नए तरीकों के साथ अब दूसरे कार्यक्रम आ गए हैं और हमें विश्वास है कि वो भी आपको उसी तरह से पसंद आते होंगे।
जैसे दुनिया जहाँ है, जहां नया तरह का कार्यक्रम है जहाँ पे अब एक ही घटना या देश के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है,
तो वहाँ से जुड़े जो सवाल हैं एक तरह से वो उसी कार्यक्रम में उनका उत्तर भी हो जाता है
जी। और ये जो चिट्ठी है हमारे नियमित श्रोता है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव,
ये बिल्कुल चिट्ठी भी आती है और ये अक्सर एसएमएस करके और ईमेल से भी बिल्कुल जागरूक श्रोता हैं।
जी जी बिल्कुल। और इन्होंने राजेश जोशी जी के बारे में लिखा है कि वो बीबीसी की आन बान और शान है और हम सब उनकी आवाज के दीवाने हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके डाकघर में पोस्ट कार्ड खत्म हो गया था तो ये अपने घर से बहुत किलोमीटर दूर चल कर प्रधान डाकघर गए हैं, वहां से लेकर ये चिट्ठी लिखी।
प्रमोद जी का जो, जिसको कहते हैं डेडिकेशन या लगाव बीबीसी हिंदी रेडियो के साथ जो है, वो बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं, हमें तो ये भी लगता है कि हमारे श्रोता हमारी आन बान और शान है।
जी बिल्कुल। और ये बहुत सजग हैं, तारीफ आलोचना दोनों
बहुत अच्छी बात भी है बिल्कुल, क्योंकि आलोचना या कम से कम जो गलतियां होती हैं उन्हें बताते रहने से हम भी सजग बने रहते हैं कि चीजें ठीक रहें।
जी। और ये चिट्ठी है अभय कुमार निराला की, ये बक्सर बिहार से लिखते हैं और इन्हें 21 जुलाई को जो विवेचना आई थी रिहान फजल की इंदिरा गांधी पर, वो इन्हें काफ़ी पसंद आई और इसी तरह की विवेचना पर और भी बहुत सारी चिट्ठियां हैं।
विवेचना आपको पसंद आई अभय जी, बहुत अच्छी बात है। हर बार मुझे लगता है वंदना, मैं जितनी बार कार्यक्रम में बैठता हूँ रेहान जी की विवेचना की तारीफ हर बार आती है, और न सिर्फ रेडियो पर बल्कि वेबसाइट पर भी जो रेहान जी की विवेचना लिखित रूप में, लेख के रूप में, आलेख के रूप में मौजूद रहती है, लोग उसे भी बहुत पसंद कर रहे हैं।
जी। और एक और कार्यक्रम जिसकी तारीफ काफ़ी आती है और मैं ईमेल ले रही हूँ अब, वो है संग संग गुनगुनाओगे। जी, आप मेरे बिना कह ही समझ गए। तो अभी जो दो ईमेल आए हैं, एक हैं जिशान नैयर बेगूसराय बिहार से और एक हैं गणेश प्रसाद हुजदर। इन दोनों ने कहा है कि ये इनका पसंदीदा प्रोग्राम है।
यतीन्द्र मिश्र जी ने बहुत ही मेहनत के साथ में और श्रोताओं की लगाव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को तैयार किया है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम जो बहुत मेहनत से बनते हैं श्रोताओं को पसंद भी आते हैं, क्योंकि फिर हमें भी ये प्रेरणा मिलती रहती है कि इस तरह की और प्रस्तुतियां हम लेके आए।
जी। मुकेश, एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो कई लोगों ने ईमेल लिखा है वो है पॉडकास्ट पर, तो जैसे जीशान ही है और इस तरह से और भी नए श्रोता, उनका कहना है कि पॉडकास्ट की समस्या दूर तो हुई है लेकिन सिर्फ विवेचना ही डाउनलोड हो पा रहा है। नमस्कार भारत और दूसरे कार्यक्रम डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
तो ये चूंकि अभी पॉडकास्ट जो है अभी शुरू ही हुआ है तो कई बार कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, और जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो जो जैसे दुनिया जहान है ऐसी चीज़ें भी, दुनिया जहान अभी रुका हुआ है पर जब आएगा तो वो भी पॉडकास्ट पर उपलब्ध होगा। ये तकनीकी गड़बड़ियाँ कई बार हो जाती हैं पर हमारी कोशिश रहती है कि उसे ठीक करें। अच्छा है ये ध्यान दिलाया इन्होंने, और एक बार फिर हम अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि उस पर ध्यान दें।
एक चिट्ठी है, ईमेल है बल्कि, ब्रजेश कुमार मुजफ्फरपुर से। ये इनका कहना है कि श्रोता तो मैं बहुत पुराना हूँ पर कभी चिट्ठी नहीं लिखी, और इनको फिल्म रिव्यूज जो आते हैं वो अच्छे लगते हैं।
ब्रजेश जी बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको फिल्म रिव्यू अच्छा लगता है। कई बार कुछ श्रोता ये शिकायत करते हैं कि ये बीबीसी किस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, पर ये दिखाती है ये चिट्ठी भी कि हर तरह का श्रोता वर्ग है। कुछ चीज़ें कुछ श्रोताओं को ख़ास तौर पे पसंद आती हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं सुहाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश चूँकि यह है कि सबके लिए कुछ ना कुछ रख सकें। कुछ को विवेचना अच्छी लगती है, कुछ को दुनिया जहाँ अच्छा लगता है, इसी तरीके से कुछ को ये फिल्म से जुड़े कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं। हमारी ये प्रस्तुतियाँ इसी तरह से जारी रहें, ये हमारी कोशिश रहती है, और चिट्ठियाँ श्रोता हमको लिखते रहें। पता
है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003,
और ईमेल है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं आपने अपनी चिट्ठियां भी सुन ली, और अब कार्यक्रम में वक्त है खेल समाचार सुनने का। मेरे सामने मुस्कुराते हुए वैभव दीवान बैठे हुए हैं। वैभव, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसका क्या हाल है?
बस अभी अभी खत्म हुआ है मुकाबला, लंदन के कनिंगटन ओवल में चल रहा था, जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला इंग्लैंड ने जीत लिया है 239 रनों से। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 492 रन बनाने थे, एक बहुत बड़ा टारगेट जिसका पीछा करना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो सकता है। इसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 252 रनों पर सिमट गई दूसरी पारी में। इस मुकाबले में टॉस जीतते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने 353 रन बनाए थे, जिसका जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 175 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से इंग्लैंड को पहली पारी में 178 रनों की अच्छी खासी बढ़त मिली। इस स्कोर में इंग्लैंड ने अगली पारी में 313 रन जोड़े, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 492 रन बनाने थे इस मैच को जीतने के लिए। इस बड़े स्कोर के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही कमजोर लग रही थी, चौथे दिन के अंत तक उनकी 4 विकेट खो चुकी थी, तो आज जब पांचवा दिन शुरू हुआ तो वो 4 विकेट के बाद से खेलना शुरू कर रहे थे। लंच से पहले 3 विकेट उनकी चली गई, और लंच के बाद मोइन अली कमाल की उन्होंने बॉलिंग डाली, हैट्रिक ली और इस मैच को अपनी टीम इंग्लैंड को जिता दिया। मोइन अली 1938 और 39 के बाद से ये इंग्लैंड के पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है इंग्लैंड में।
अच्छा,
तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर की सेंचुरी रही, मगर वो कामयाब नहीं रहे और इंग्लैंड इस मैच को 239 रनों से जीत गया। बेन स्टोक्स मैन ऑफ द मैच रहे।
इसके अलावा बैडमिंटन का क्या हाल है?
हाँ, मैं पहले ये भी बता दूं कि अब 4 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है इसमें इंग्लैंड 2-1 से आगे हो चुका है
जी।
हाँ, बैडमिंटन में है कि न्यूजीलैंड ग्रांड प्री में अब यूएस ओपन चैंपियन बने एचएस प्रणॉय दिखेंगे, और साथ में इस यूएस ग्रांड प्री में फाइनल तक पहुंचे पुलेला गोपीचंद के शिष्य रहे पी कश्यप भी नजर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया वैभव दीवान खेल समाचार अपडेट सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने पहली बार आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाला कोई नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इराकी दूतावास पर आत्मघाती हमला हुआ, चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, 2 अफगान सुरक्षा कर्मियों समेत 4 हमलावरों की मौत हो गई है। वेनेजुएला में नई असेंबली के लिए मतदान के फैसले को अमरीका ने तानाशाही करार दिया है। उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाले सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीरों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि एक दशक में उत्तर कोरिया की राजधानी में बिजली की सुविधा बेहतर हुई है, इससे वहां की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में आज बस इतना ही। स्टूडियो संभाल लेते राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम में आपसे मुलाकात तय है और इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है, जहां आज प्रेमचंद से संबंधित बहुत सारी खबरें आपके लिए हैं। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।